लेकिन आखिरी बात जो इब्राहिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो दुआ की और उनके काम, ये है असल में सबसे अहम बात जो इन दुआओं के अंदर हमें झलकती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तरीका इबादत खुद नहीं ढूंढा। आज हम कहते हैं क्या हर्ज, क्या फर्क पड़ता है, हर्ज क्यों नहीं, फर्क क्यों नहीं, सब कुछ पड़ता है। अल्लाह ने जो कहा वो करना है, ना कि ये कि अल्लाह ताला से मनवाना है हमने। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो चीज मांगी वो क्या थी, तीनों को देखे, तीन बड़े मकासद हैं यहाँ नबूवत के। बेसते नबी, अभी रबीउल अव्वल आएगा ना, जरा आप देखेंगे जो नबी सल्लम के ऊपर नाते और बातें होंगी, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह और कई चीजें। आज आपको इस एक आयत में, ये पहली दफा यहाँ आई है, दोबारा बिल्कुल यही आयत थोड़े 19-20 के फर्क से सूरह सफ और सूरह फतह, तीन जगह ये आयत आती है। इतना क्लियर कट आमदे रसूल का मकसद बताती है कि इससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से नहीं है। थोड़ा सा इस पर गौर करें, बाकी ये जहां आगे आती रहेंगी साथ साथ आप भी बड़े होते जाएंगे तो आपको इसकी बारीकियां समझाती जाऊंगी। लेकिन यहां देखिए पहली चीज क्या, यतलु अलैहिम आयातिक, तेरी आयतें पढ़े इन पे। हम आयतों के पढ़ने को क्या कहते हैं, तिलावते कुरान, यही सोचते हैं ना। फिर आगे आप देखिए दूसरी चीज, युअल्लिमुहुमुल किताब, हम कहते हैं इल्म। हालांकि असल बात जो पता क्या है, तिलावते आयत के अंदर तर्जमा शामिल है। यहाँ बहुत बड़ी बात समझने वाले हैं आप लोग, कुरान की तिलावत, जैसे पिछले सबक में भी हमने देखा था यतलू ना हो हक तिलावती, कुरान पाक का लफ्जी तर्जमा या उसको अपनी जुबान में समझना, ये तिलावत के अंदर ही आता है। वरना आप देखिए कि अगर नबी सल्लम जो कि अरब में कुरान पढ़ते थे तो सहाबा को समझ आता था कि नहीं आता था, आता था, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं लोगों ने आपकी बात को माना। तो युअल्लिमुहुमुल किताब में अगली चीज क्या आती है, कुरान की तिलावत में उसका समझना आ गया, आपको कुरान का तर्जमा याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। बट युअल्लिमुहुमुल किताब फिर क्या है, कुरान पाक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में समझना। मैं आपको दो चार मिसालें देती हूँ, फिर आपको मेरी ये बात ज्यादा आसान लगेगी। आप देखिए कि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है तो क्या आप मेडिकल की बुक्स पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं? क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। कोई बच्चा इंग्लिश जानने की वजह से लॉयर बना कभी? बिल्कुल इसी तरह हम लोगों का जो ख्याल है कि अरबी बोलने वाले सब लोग कुरान को समझते हैं, ये गलत है, ये बहुत बड़ा धोखा है। मैंने खुद इस चीज को प्रैक्टिकली जाकर अरब मुल्कों में देखा है कि जब मैं अपनी एक क्लास में अपनी टीचर के साथ होती थी और वो मुझे अरबिक लैंग्वेज सिखा रही होती थी और मैं उनको कुरान की आयत कोट कर देती थी, हाँ हाँ ये लफ्ज़ वहाँ है, तो वो यूं देखती थी, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता है? वो कहती थी यू नो मोर देन मी। मैंने कहा क्योंकि मुझे कुरान आता है, मैं कुरान पहले आता था मुझे। फिर मैं उनसे पूछती थी डू यू नो दिस आयत, ये वो, कहती मोस्टली पीपल डोंट नो। अरबों को भी कुरान की तालीम लेनी पड़ेगी, ये कहना चाह रही हूँ। अगर आप और मैं अरब घर में पैदा हो जाते तो मत सोचिए क्या मालिम होते, हम स्कॉलर होते। हर अरब जो है वो हाफिज तो नहीं है ना, आपको मुझे उर्दू की हर किताब आती है, हम उर्दू समझते हैं कि अलामा इकबाल की पोइट्री आती है, मीर अहमद मीर की आती है, नहीं आती ना। तो कुरान पाक को समझने में सबसे पहले उसका तर्जुमा, जब सहाबा सुनते थे उनको तो अपनी जुबान में ऐसे ही लगता था ना जैसे मैं उर्दू में समझ आता है, इसके बावजूद अबू जहल नहीं माना। तो कुरान का इल्म सिर्फ फायदा नहीं देता, इसके लिए बंदे को क्या चाहिए होता है, युअल्लिमुहुमुल किताब, ये है हदीस की रोशनी में। अगर आप हदीस को निकाल के कुरान की तफसीर करेंगे तो आप तो पता नहीं कहाँ जाके चोट खाएं। आज बहुत बड़ा फितना है, डिक्शनरी की मदद से कुरान समझ लो, साइंटिफिक फैक्ट्स की रोशनी में कुरान समझ लो, कुरान की तफसीर साइंसी हकायक की रोशनी में, ये पार्ट ऑफ हो सकता है। कभी आपको साइंस का फिगर बता दें, आप ग्रामर बताएं, डिक्शनरी बताएं, बट ये कुरान की तफसीर नहीं है। तफसीर वो है जो शायद का मतलब नबी सल्लम ने समझाया, क्योंकि मुसलमानों ने बड़ी दूर की खाई है। वही मिसाल दे देती हूँ, जैसे सलफ सलात, अकीम उस सलात, नमाज पढ़ो, डिक्शनरी कहती है सलात का मतलब आग तापो। अब कोई आग जलाए और उसके हाथ तापना शुरू करे तो क्या कर रहे हो, केगा सलात कर रहा हूँ, क्योंकि डिक्शनरी में सलात का मानी ये है, गलत हुआ ना। तो हदीस या नबी सल्लम की बताई हुई बात के बगैर आप और मैं कुरान की ये बातें नहीं समझ सकते। फिर इसके बाद ये देखिए कि नबी सल्लम के बारे में ये जो बात आपको कही गई कि हजरत ईसा का ख्वाब और उसका फला, तो इसके बारे में आपने वो सुना होगा, शेर है कुछ कि यकायक हुई गैरते हक को हरकत, बढ़ा जानबे बु कभी सब्रे रहमत, अदा खाक के बदखा ने की वो वदियत, चले आए थे जिसकी देते शहादत, हुई पहलुए आमना से हवीदा, दुआए खलील व नवीदे मसीहा। यानी नबी सल्लम दुआए खलील थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थे। फिर इसी तरह से एक और चीज इसमें हमें समझ आती है, और वो क्या है, आप भी तो यहाँ पढ़ने आए हैं ना कुरान, आपके इस कोर्स का यानी रूहुल कुरान या सबीलुल जन्ना या सुबुल सलाम या कोई और नाम है, इसके भी यही तीन मकसद होने चाहिए। तिलावत कुरान, यानी आप यहाँ आए तो आपकी तजवीद ठीक हो जाए, कुरान का आपको तर्जमा समझ आ जाए। फिर उसके बाद आपको तालीम किताब व हिकमत कैसे मिले कि आप उस लफ्ज़ों की हकीकत जाने, उसको हदीस के साथ जोड़े, तफसीर में उसके बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ तक तो बात बहुत सारे लोगों की ठीक होती है, बट सबसे अहम चीज़ जो ओवरलुक्ड होती है वो क्या है, नंबर एक हिकमा, आखिरी चीज़ से पहली, और दूसरी जुज़ा की है। हिकमत नहीं आती लोगों को, तबलीग करते हैं सर फाड़ डंडा मारने वाला अंदाज, किसी की खैर ख्वाही कर रहे होते हैं और अगले को साबित हो रहा होता है कि आपसे बड़ा कोई मेरा दुश्मन नहीं है। तो सबसे पहले तो अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह हमें हिकमत दे। हिकमत क्या होती है कि एक इंसान बिल्कुल कुरान को वैसे समझने लग जाए जैसे कि ये नाजिल हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मानी को मफहूम को जिस तरह बताया उतना आपको भी समझ आ जाए। फिर दूसरी बात क्या होती है, वक्त और मौके महल के मुताबिक ये काम हो जाए। और इमाम शाफी कहते हैं कि हिकमत से मुराद हदीस भी है, यानी कुरान के इस कोर्स में कुछ ना कुछ हिस्सा हदीस का भी आप पढ़ लें। तस्किया क्या है, ये है असल में वो काम जो बिल्कुल कहना चाहिए कि लॉस्ट सुनना। आज हमारे मदरसों में लड़के लड़कियां माशाल्लाह 10-10 साल पढ़ के आते हैं, हमारे अपने साथियों में कुछ साथी ऐसे होते हैं 10-12 साल का कोर्स आलिमा का किया और यहाँ आने के बाद 2-4 महीने के बाद वो कहती हैं कि मुझे लगता है मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ। तस्किया नहीं होता हमारे मदारिस में, तर्जमे पे, तजवीद पे, ग्रामर पे, सर्फ व नहव पे बहुत जोर है माशाल्लाह, लेकिन तस्किया नहीं। तस्किया क्या होता है, अच्छी बातों को डालना और बुरी निकालना, इज अ ड्यूल एक्शन, डबल। जैसे एक माली है ना, बीज भी डाल रहा है तो वो उसमें जड़ी बूटियां उसको भी निकाल रहा है। आपका मेरा इस कुरान और हदीस और इल्म के बाद क्या हाल होना चाहिए कि दिन ब दिन अच्छी आदतें डले, नेकियों का शौक बढ़े, बुरी आदतें निकल जाएं, गुनाहों का शौक निकल जाए। दिन ब दिन आप और मैं खूबसूरत तरीके से अपने किरदार को पहले से पहले पुख्ता करें। और तज़किया कहते हैं साफ सुथरा बनाना, जाहरी सफाई भी आ जाए और बातनी भी आ जाए, अंदर से कुफ्र खत्म हो जाए, शक चला जाए, गैर अल्लाह पर एतमाद चला जाए, हसद निकल जाए, बुग़्ज़ तकबर चला जाए, और बाहर से खूबसूरत अखलाकियात आए। जैसे आप देखिए कि एक काश्तकार जब ज़मीन में फसल डालता है तो पहले वो ज़मीन का तज़किया करता है, गोडी करता है, हवा डालता है उसके अंदर, ऑक्सीजन मिलती है, फिर जड़ी बूटियों को निकालता है जो उसमें फैली होती हैं, फिर अगर ज़मीन में खाइयाँ हों ऊंची नीची तो उसको बिल्कुल सीधा करता है, पत्थर है कोई रोड़े अटके हुए तो उनको निकालता है, फिर हल चलाता है, फिर इस तरह ज़मीन को ऐसे भुरभुरी भुरभुरी सी कर देता है। ये सब करने के बाद बीज डालता है, और ये सारे काम एक उस्ताद कर सकता है। या फिर वही बात करूंगी, तज़किया नफ्स होता ही नहीं उस्ताद के बगैर। लोग कहते हैं कि दो चीज़ों से बंदा सीखता है, किस किस चीज़ से सीखता है इंसान, कि या फिर अल्लाह ताला का कुरान है, यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि सोहबत सालेहीन, नेक लोगों की सोहबत के बगैर एक इंसान तज़किया अपना करवा नहीं सकता। नबी सल्लम के सहाबा क्या थे इस्लाम से पहले, शराब भी हाथों को लगी हुई थी और जो माशरे की गंदगियां थी, लेकिन कुरान जिंदगियों में आता गया। इस तरीके से आप अपने आप को खूबसूरत से खूबसूरत करते गए कि बिलाल को देख लीजिए और उमर को देख लीजिए। अल्लामा इकबाल ने बड़े प्यारे अंदाज में सहाबा के बारे में एक पोइम पढ़ी है, कहते हैं खाकी और नूरी निहाद बंदा मौला सिफात, हर दो जहां से गनी इसका दिल बेनियाज। ये है तज़किया, आप बेनियाज हैं, हर बात से ही आपका दिल खुश है, इसकी उम्मीदें कलील इसके मकासद जलील। ये कुरान आपको ये दे फिर मैं खुश हूँ आपसे भी और अपने आप से भी, दिल गनी हो जाए, बेनियाज हो जाए, दुनिया मिलती है मिले, नहीं मिलती ना मिले, उम्मीदें कलील रखें, छोटी उम्मीदें आपकी, और मकासद बड़े ऊंचा हाई विजन हो आपका। इसकी अदा दिल फरेब, इसकी निगाह दिल नवाज। अदाएं भी दिल फरेब हो जाती हैं अल्लाह वालों की, और निगाहें दिल नवाज। नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, बोलने में सॉफ्ट स्पोकन हो जाए और जुस्तजू में गरम दम। एम्बिशियस यानी कि ठंडे ठंडे कर लेते हैं, कहते हैं तो कर ले नहीं, अंदर से आग लगे कि अच्छा मैंने अब कुछ करना है। आपके अंदर एक मोटिवेशन आए, रज्म हो या बज्म हो, पाक दिलो पाक जो, मैदान जंग में चला जाए या पार्टी में चला जाए, दिल पाक रहता है, निगाहें भी पाक है। यानी कि शादियों के नाम पे नजरें गंदी करके आ जाओ, हम जो भी समझे। इसके जमाने अजीब, इसके फसाने गरीब। कहते हैं मोमिन का जमाना अजीब है और इसके फसाने गरीब है, यानी इस गरीब से मुराद वो गरीब नहीं अजनबी के मानों में। अहदे कोहन को दिया इसने पैगामे रहील, साकी अरबाब ज़ौक के फारस से मैदान शौक, बादा है इसका रहील, तय है इसकी असीर। मुझे पता आपको आधे से ज्यादा तो समझ कोई नहीं आया, लेकिन तस्किया क्या है कि आपकी जिंदगी उमर जैसी, अबू बकर जैसी, उस्मान जैसी, और आप ऐसे हों कि खालिद बिन वलीद हैं तो सैफुल्ला बन जाए, अबू बैदा बिन जरा है तो मीने मत बन जाए। एक एक सहाबी ईमान का एक ऐसा खूबसूरत चिराग बना कि जिसने बाद में इंसानियत को चमका दिया। कल के सबक में उनका तस्करा आएगा, तो ये दुआ करें कि कुरान मुझे आपको बदल दे। वो कहता है ना कि जानता हूँ सवाबे ता तो जोहद, यानी मुझे पता है कि अल्लाह की बात मानने और जोहद का अजर कितना है। नहीं पता आपको? मुझे सबको पता है ना, यानी कहने वाला कहते हैं मुझे पता है कितना सवाब है अल्लाह की बात मानने से जोहद करते, पर तबीयत इधर नहीं आती। तो ये तज़किया है कि तबीयत इधर आने लग जाए। बुरी चीजों को जान लेना बड़ी बात नहीं होती, उसको छोड़ देने का बड़ी बात है। साहबा कराम कहते हैं कि नबी सल्लम के साथ ने हमें बताया कि जिंदगी में तज़किया क्या होता है। नमाजों का वक्त आता था तो साहबा के रंग उड़ जाते थे, हज़रत अली का रंग पीला हो जाता था, कहते थे बहुत बड़े दरबार में जाने वाला। हज़रत बिलाल कहते हैं हमने कुरान में कई बार खुशू और खुजू का जिक्र पढ़ा था, समझ उस दिन आया जब नबी सल्लम को क़यामुल लैल करते हुए देखा, ये ज़की है, फिर समझ आया कि अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत आपके सीने में ऐसे डालती थी कि हंडिया के उबलने की आवाज़ आती थी। बेरगबती के बारे में कहते हैं बहुत जानते थे, जोहद के बारे में जानते थे, पर उस दिन पता चला जिस दिन नबी के पेट पे पत्थर बंधे हुए देखे कि सहाबा के साथ मिलकर वो खंदक खोद रहे थे, और नमाज से ऐसे उठ के भागे वापस आके का चंद अशरफियां घर में रह गई थी, पलट आया कि जल्दी से भूल गया था उसको वापस करके आऊं। तो ये तज़किये के लिए सोहबत जरूरी होती है अच्छे लोगों का। अब ये नहीं कि एक पल्लू पकड़ लो किसी को, मुर्शद और पीर बना लो और उनकी शक्ल से, उनके सीने से आपके सीने में आ जाए। तो सारी बातों के बाद आखिरी बात के अजीज़ुन हकीम, आखिरी लफ्ज अल्लाह ताला के नबी की बेसत और इब्राहिम की दुआ के बाद अब अजीज़ुन हकीम का जिक्र क्यों आया? तो आप देखिए कि अजीज कहते हैं गालिब और इज्जत वाले को, कुव्वत वाले को, वो जात जो पूरी कुव्वत और हैबत वाली हो, और हकीम जिसका हर काम हिकमत वाला हो। पता है क्या चला कि अल्लाह ताला इस कायनात पर कुव्वत भी रखता है, गलबा भी रखता है, और अपनी हिकमत के साथ काम करता है। हम तो कहते हैं काम फट फट हो जाए, लेकिन काम फौरन नहीं होते। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमारे अंदर ये सारी खूबियाँ डाल दे जो यहाँ हमने पढ़ी, और इस पूरे सबक में से अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। जो कुछ भी पढ़ा है आप देखिए कि अगर सिर्फ कानों ने सुना है तो फिर तो बस कानों तक ही रहेगा, लेकिन अगर दिल के कान सुन लेते हैं तो फिर हकीकत में ज़िंदगी बदलती है। और मैं कहती हूँ कि आज के दौर में फिर यही दुआएं मांगने की ज़रूरत है। आज उम्मत को ऐसे ही दोबारा इंसानों की ज़रूरत है कि युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम, किताब, हिकमत, तालीम, तज़किया, तिलावत, ये सब कुछ ले। सहाबा की दुनिया जो बदली थी, हैरत होती है कि इतना बिग चेंज तो इंसानों में कभी नहीं आता। तो उसकी वजह नबी का ये सारा मामला था। अल्लाह ताला आज हमें भी ऐसा बनाए और हमारे जरिए से दीन का कोई काम ले ले। ठीक है, चलिए फिर आप लोग जा सकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन।
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.